नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता फिर शुरू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के विजन में सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। लेबनन और इसराइल बृहस्पतिवार को अमरीका में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। बलूचिस्तान में लोगों के जबरन लापता होने की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी। एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने 15 वर्ष के बाद त्याग पत्र की घोषणा की। और भारत के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन में व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। भारतीय अधिकारियों का दल 20 से 22 अप्रैल तक निर्धारित 3 दिवसीय वार्ता के लिए अमरीका पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन कर रहे हैं। उनके साथ सीमा शुल्क विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये चर्चाएं द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर वार्ता का अगला कदम है, जो दोनों ही देशों के बीच अंतरिम व्यवस्था को अंतिम रूप देने के मकसद से पिछली बातचीत पर आधारित हैं। अधिकारियों ने कहा कि वाशिंगटन बैठक में अंतरिम व्यापार समझौते पर पहले से हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ये वार्ताएं ऐसे समय हो रही हैं जब अमरीकी टैरिफ व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे पहले की सहमति जटिल हो गई है। इस बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रही है।
हमने अपना मुक्त व्यापार समझौता लगभग पक्का कर लिया है, जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण है। हम इस समझौते की सभी बारीकियों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि वह कौन सा तंत्र होगा जिसके जरिए भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमरीकी बाजार में वरीयता मिल सके।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ई जे म्योंग के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान राष्ट्रपति ई ने कहा कि भारत के साथ मिलकर नए भविष्य की राह खोलने में कोरिया गणराज्य परस्पर लाभकारी भागीदार बन गया है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और दक्षिण कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। साझा प्रयासों के माध्यम से दोनों देश शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना योगदान जारी रखेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर $50 अरब करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग के साथ वार्ता के बाद ये घोषणा की। दोनों देशों ने खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की तलाश करेंगे।
हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे।
भारत और दक्षिण कोरिया ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव पी कुमारन ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने विशेष रणनीतिक साझेदारी में समग्र प्रगति की समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। सहयोग के नए क्षेत्रों में पोत निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सप्लाई चेन की मजबूती और विविधता शामिल है। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच आपसी संबंध को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, दोनों के विचार एक समान है।
राष्ट्रपति ई ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधा भी लगाया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने पुष्टि की है कि वो गुरुवार को लेबनन और इसराइल के बीच दूसरे दौर की वार्ता की मेजबानी करेगा। ये वार्ता क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों में सीधी बातचीत को बढ़ाने का प्रयास है। इस वार्ता का आयोजन अमरीकी विदेश विभाग में होगा। पिछले सप्ताह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध विराम के बाद ये पहली औपचारिक वार्ता होगी। ईरान और अमरीका के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को समझौते के लिए पहले से बेहतर प्रस्ताव दे रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल में उन्होंने ये भी लिखा कि ईरान के साथ प्रस्तावित नया समझौता 2015 के उस परमाणु समझौते से कहीं बेहतर होगा जिससे वो 2018 में अलग हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 दिन की जर्मनी यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है।
रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। श्री सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ वार्ता करेंगे। बातचीत में रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग रूपरेखा और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के प्रशिक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता होने की भी संभावना है। रक्षा मंत्री जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे ताकि मेक इन इंडिया पहल के तहत संयुक्त विकास और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
बलूचिस्तान में लोगों के जबरन लापता होने के मामलों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी हैं। बलूच यकजहती समिति के अनुसार केज जिले के सहाकी बलगातर किला इलाके में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे राजमार्ग पर एक परिवार ने अपने परिजन की कथित जबरन गुमशुदगी के बाद एक धरना प्रदर्शन किया और उसकी सुरक्षित रिहाई की मांग की।
24 वर्षीय किसान अबीदीन बलूच को रविवार शाम किलखोर रोड से कथित तौर पर उठा लिया गया था। इसके बाद से परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये आंदोलन जबरन गुमशुदगी को समाप्त करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग के लिए है। इस बीच बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा है कि ऐसी घटनाएं मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और परिवारों को न्याय से वंचित करती है। मानवाधिकार संगठनों ने यह भी बताया कि दर जिले में हाल ही में सुरक्षा बलों की छापेमारी के दौरान एक नाबालिग सहित 4 लोगों को भी कथित तौर पर हिरासत में लिया गया था। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2011 से एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रहे टिम कुक 1 सितंबर 2026 को अपने 15 साल के नेतृत्व कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ देंगे। भारत के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता फिर शुरू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योंग ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के विजन में सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। लेबनन और इसराइल बृहस्पतिवार को अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे। बलूचिस्तान में लोगों के जबरन लापता होने की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी हैं। एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने 15 साल के बाद त्याग पत्र की घोषणा की। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।